नबी, अगर वो यानी कुफार आपको छुटलाते हैं तो इनसे पहले कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत और अहले मदियन भी छुटला चुके और मूसा भी छुटलाए जा चुके, इन सब मुनकरीन हक को मैंने पहले मोहलत दी। लफ्ज़ देखिए, फाम लई, तो आज भी अल्लाह ने बहुत जालिमों को मोहलतें दी हुई हैं, वो समझ नहीं रहे। फिर पकड़ लिया तो अल्लाह की पकड़ आती है मोहलत से फायदा ना उठाने वालों पे। अब देख लो कि मेरी अकूबत कैसी थी, कितनी ही खताकार बस्तियां हैं जिनको हमने तबाह किया और आज वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं, कितने ही कुएं बेकार और कितने ही महल खंडर बने हुए हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि इनके दिल समझने वाले और इनके कान सुनने वाले होते? हकीकत ये है कि आंखें अंधी नहीं होती मगर दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि इसमें एक तो अल्लाह की पकड़ और मोहलत की बात थी, जरा सा दीन की तरफ आने लगे आवाजें उठती हैं, निगलेक्ट निगलेक्ट निगलेक्ट, घर निगलेक्ट हो रहे हैं, बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, वो नहीं उसके हक नहीं दे रहे, घर में बुजुर्गों को छोड़ के जा रही हैं, ये कर रही हैं वो कर रही हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, कभी तुमने सोचा तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान तुम्हारा ये सब कुछ है मगर तुम इससे काम क्या ले रहे हो? तो याद रखिएगा कि वो घर कब्रिस्तान है जहां अल्लाह का जिक्र नहीं है। हम अपने बच्चों के बाद भी, आज हम दुनिया में हैं कल नहीं होंगे, बच्चे फिर भी निगलेक्ट होंगे। मैंने बगैर माओं के पलते बच्चे देखे, बगैर बापों के बच्चों को बड़े आला ओहदों पे पहुंचते देखा। ना माँ कुछ कर सकती ना बाप कुछ, हाँ जब माँ और बाप अल्लाह से जुड़ जाते हैं ना तो उन बच्चों के नसीब भी अल्लाह बनाता है। अभी पिछले पारे में कितनी बात करके आए हैं 16वें पारे में, सारा टॉपिक ही ये था कि आपकी नेकियां आपके बच्चों को भी फायदा देती हैं। और याद रखिए कि दुनिया से बहुत सारे लोग चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात एक और जहन में रखिए और वो क्या है, अल्लाह फौरन नहीं पकड़ता। ये अमलई तो, और इस पे अटकी हुई हूं मैं, पहले अमलई तो फिर उसके बाद पकड़, पहले मोहलत देता है अल्लाह फिर पकड़ता है। बहुत सारे लोग मोहलत के दिनों को समझ नहीं पाते और इतने में ही फिर अल्लाह ताला की क्या आ जाती है, अख्ज आ जाती है, अख्ज तो हम। फिर दूसरी बात एक और याद रखिए और वो क्या है कि अल्लाह सुबहाना ताला मुझे आपको इन आयतों में इस बात की भी दावत देते हैं कि इन आंखों और इन कानों से कुछ काम लो। 3 सेकंड तक आप आंखें बंद करें, अब आपको कुछ नहीं दिख रहा ना, अब आपकी आंखें बंद हैं और अगर आप कानों पे उंगली रख दें तो आपको मेरी आवाज भी नहीं आएगी। सिर्फ एक डॉट काफी है कान बंद होने के लिए, और सिर्फ ये पलकों का, ये जो ऊपर का ये जो छप्पर होता है ना आंखों का, क्या बोलते पपोटे, इतना सा पपोटा काफी है आपकी मेरी इस आंखों की बसारत को छीनने के लिए। कोई बड़े हुक्मों की जरूरत नहीं कि अल्लाह कह दे कि पीछे से सारा सिस्टम, फरिश्तों जाओ इसकी बसारत का बंद कर दो, इसकी समात को बंद कर दो, सिर्फ एक छोटा सा डॉट है, हम आप अल्लाह के इतने काबू में हैं। और अगर हमने इनसे वो काम ना लिया, इन आंखों से गंदी चीजें देखी, इन कानों से फुहश बातें सुनी और इस दिल में गंदे ख्यालात रखे, तो अल्लाह कहता है फिर आंखों के अंधे अच्छे हैं कि जो टटोलते हुए मस्जिदों और दरसगाहों के रास्ते तो ढूंढ ही लेते हैं। जरा सोचिए अगर ये नेमतें ना होती जो हैं तो मेरी जिंदगी कैसी होती? ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ ना करेगा मगर तेरे रब के हाँ का एक दिन तुम्हारे शुमार के 1000 बरस के बराबर होता है। ये जवाब है इस बात का कि अल्लाह कुछ लोगों को गुनाहों के बावजूद पकड़ता क्यों नहीं, कहा भी कुछ नहीं किया। 1000 साल को जिएगा तो अल्लाह की नजर में 1 साल जिया, तो अल्लाह के हिसाब बड़े लंबे हैं। हम तो 1-2 दिन के बाद थक जाते हैं, हम कहते सॉरी हम आपके साथ नहीं चल सकते। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तो 1000 साल के भी गुनाह करने वालों को मोहलतें देता हूँ, मेरी नजर में ऐसे जैसे उसने एक ही दिन ये गलत काम किया। ए नबी कह दो के लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ वो शख्स हूँ जो बुरा वक्त आने से पहले साफ साफ खबरदार कर देने वाला हो। शोर से कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए आज आपको डिफरेंट गैजेट्स के जरिए बताया जाता है, सैलाब आ रहा है, तूफान आने वाला है, कल गर्मी होगी, परसों सर्दी होगी, बारिश होगी, बर्फ होगी। हम कितने शुक्रगुजार होते हैं वेदर चैनल वालों के लिए, सिर्फ इसलिए पढ़ गए थे कि जी बारिश होगी छतरी साथ ले गए, भीगने से बच गए। गर्मी होगी शुक्र है पढ़ लिया, मोटे कपड़े पहनने से बच गए। जरा सोचिए उस शख्स को जिसने इंसानियत की हिदायत के लिए अपनी जिंदगी सर्फ कर दी। अल्लाह के नबी को क्या लेना था लोगों से, साफ साफ खबरदार करने वाला, ये काम मुझे आपको करना है। इंसानियत की दुआएं लेनी है तो लोगों के लिए इस्लाह का प्रोग्राम बनाएं। फिर जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे इनके लिए मगफरत है, और इज्जत की रोजी और जो हमारी आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वो दोजख के साथी हैं। ये आयतों को नीचे कैसा दिखाया जाता है? इसको कम अहम बनाकर, नहीं अब सोच लो, देख लो, ये कैसे हो सकता है, बड़ा मुश्किल है। कई लोग हैं जो इस कुरान की वैल्यू को डिवेल्यूएट करते हैं। बेहतर नहीं था घर में बैठ के पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो, इस साल तो उस कुरान ही नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? याद रखिए, शैतान मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के दिल कुरान की आयतों से हटाते हैं। और नबी, आपसे पहले भी हमने कोई रसूल ऐसा न भेजा न नबी जिसके साथ ये मामला न पेश आया हो कि जब इसने तमन्ना की, शैतान इसकी तमन्ना में खलल अंदाज हो गया। इसी तरह जो कुछ भी शैतान खलल अंदाजियां करता है, अल्लाह इनको मिटा देता है और अपनी आयात को पुख्ता कर देता है। अल्लाह अलीम और हकीम है। ये वो इसलिए ऐसा होने देता है ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को फितना बना दे इन लोगों के लिए जिनके दिलों में रोग लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं। हकीकत यह कि ये जालिम लोग इनात में बहुत दूर निकल गए, और इल्म से बेबहरमंद लोग जान लें कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, वो इस पर ईमान ले आए, इनके दिल इसके आगे झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा रास्ता दिखाता है। यहाँ खलल अंदाजियों की बात है। नबी की तमन्ना क्या होती है? हर उस नेक इंसान की तरह क्या कि अल्लाह लोगों के दिलों को बदल दे, लोग कुरान से मोहब्बत करें। शैतान ने उस दौर में भी खलल डाले, शैतान ने आज भी डाले। सवाल पैदा होते हैं कि जब इंसान कुरान के साथ इस दर्जे का ताल्लुक रख लेता है कि फिर शैतान भी उससे मायूस हो जाए, तो फिर उसका मुकाम क्या है? आप और मैं अपनी डिस्ट्रेक्शंस को देखें, इस वक्त भी देखें, बिलीव मी होंगी, किसी का हाथ में हाइलाइटर उसकी डिस्ट्रेक्शन होगी, किसी का पेन डिस्ट्रेक्शन होगा, किसी के लिए उसकी जगह मेरी ठीक नहीं है, मैं सही नहीं बैठी। आप और मैं चुपके चुपके अंदर से शैतान जो मुझे आपको इस वक्त भी इधर से उधर उधर से इधर करने की ख्वाहिशात रखता है ना, उस पर गौर करें तो आपको हैरान होंगे कि जितने आप और मैं बैठे हैं ना इधर माशाल्लाह, इतने ही शैतान भी बैठे होंगे। और उसका वक्त है, थोड़ी देर में आपकी तवज्जो चली जाए, कभी ऊंग आएगी, कभी ऐसे लग, क्या ये बात हुई थी? हो सकता है शाम को कोई सिस्टर आपसे कि हाय वो बात सुनी थी, कितना दिल डरा, आप कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं पता हुआ क्या, उस वक्त शैतान ने खलल डाल दिया। इसलिए दीन की महफिल में कहा जाता है पिन ड्रॉप साइलेंट, इसलिए कहा जाता है छोटी सी आवाज भी, एक मासूम बच्चा भी है, एक अगर हाथ का अंदर एक छोटा सा आला भी रखा हुआ है, उन सबको थत्तुल बसा खामोश करो, क्यों कि शैतान बहकाता है। आप देखिए ना, एक बच्चे की आवाज आती है, हम सब की तवज्जो चंद सेकंड के लिए उधर जाती है ना, उतने में जो तर्जुमा पढ़ा जा रहा होता है वो मिस हो जाता है। तो पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो और मैं कम से कम दूसरे की किसी ऐसी हरकत की वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। कभी अपने साथी को हाथ न लगाया करें, क्या हुआ, क्या कहा, क्या हुआ, आपका छूटा है अगले का भी छूट जाएगा। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधा रास्ता दिखा दे। वला यज़ालुल्लज़ीन कफरू, इनकार करने वाले तो इसकी तरफ से शक ही में पड़े रहेंगे यहां तक या तो उन पर क़यामत की घड़ी अचानक आ जाए या एक मनहूस दिन का अज़ाब नाज़िल हो जाए। उस रोज़ बादशाही अल्लाह की होगी, आज भी उसी की है, सिर्फ महसूस करने की बात है। और वो इनके दरमियान फैसला कर देगा, जो ईमान रखने वाले और अमल सालेह करने वाले होंगे वो नेमत भरी जन्नतों में होंगे। आपने फील किया है बार बार अमल साले का तस्करा है, और अगली सूरत में तो बहुत ही ज्यादा है, सूरत मोमिनून में। और जिन्होंने कुफर किया होगा और हमारी आयात को झुठलाया होगा उनके लिए रुस्वा को नजाब होगा, और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की, अल्लाह हमें तौफीक दे, फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, अल्लाह इनको अच्छा रिस्क देगा, और यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन राजिक है, वो इन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। ए अल्लाह, हम आज भी तुझसे खुश हैं, हमें ऐसी जगह में जरूर ले जा कि जहां हम बाकी खुश हों। बेशक अल्लाह आलिम और हलीम है, ये तो है इनका इंजाम, और जो कोई बदला ले वैसा ही जैसा इसके साथ किया गया और फिर इस पर ज्यादती की गई, तो अल्लाह इसकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह मुआफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है। अल्लाह ताला हमसे दरगुजर फरमाए। ये इसलिए कि रात से दिन और दिन से रात निकालने वाला अल्लाह ही है, और वो समीउम बसीर है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है, और वो सब बातिल हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, और अल्लाह ही बाला दस्त और बुजुर्ग है। क्या तुम देखते नहीं हो कि आसमान से अल्लाह पानी बरसाता है और इसकी बदौलत जमीन सर सब्स हो जाती है? हकीकत यह है कि वो लतीफ़ो खबीर है। क्या पता चला, बंजर जमीन पे बारिश पड़ती है तो वो सब्स हो जाती है, बंजर दिलों पे कुरान की बारिश पड़ती है तो वो भी सरसब्ज होते हैं, और जमीन से फिर फल फूल उगते हैं, और दिलों से फिर नेकियों के सोते फूटते हैं, फिर नेकियां करने को दिल चाहता है। अल्लाह हमारे दिलों को हरा कर दे। इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है, बेशक वो गनी और हमीद है। क्या तुम देखते नहीं हो? आप नोट कर रहे हैं, क्या तुम देखते नहीं हो, यानी मुराद है देखो, गौर करो, प्रवोक किया जा रहा है, तवज्जो दो। क्या तुम देखते नहीं हो कि इसने वो सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख़र कर रखा है जो जमीन में है, और इसी ने कश्ती को कायदे का पाबंद बनाया है। ये हाईलाइट कर लें, कश्तियां भी कायदों की पाबंद हो तभी चलती हैं। जहां कोई कश्ती कायदे और कानून से हटी, डूबना उसका नसीब होगा। कि वो इसके हुक्म से समंदर में चलती है, हम भी जब अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, हमारी जिंदगी कश्तियां बहुत सुकून से गुजरती हैं। अगर हमारी जिंदगी की कश्ती में इस वक्त कोई हलचल मची हुई है, डामाडोली है, किसी बड़े तूफान से हम नबर्दाश्त हैं, तो एक काम कीजिए, अल्लाह के हुक्म पे चलना शुरू करते हैं। और वही आसमान को इस तरह थामे हुए कि इसके इज्जत के बगैर वो जमीन पर नहीं गिर सकता। वाकया ये है कि अल्लाह लोगों के हक में बड़ा शफीक और रहीम है, वरना कब की ये बिजलियां घरों पे टूट चुकी होती और इंसान जल के भस्म हो चुके होते। वही है जिसने तुम्हें जिंदगी बख्शी। ये लफ्ज वही पे गौर करके प्यार से कि अल्लाह वाकई तू वही है, तेरे सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता था। वही तुमको मौत देता है और वही फिर तुमको जिंदा करेगा। सच ये है कि इंसान बड़ा ही मुनकरे हक है। हर उम्मत के लिए हमने एक तरीका इबादत मुकर्रर किया है जिसकी वो पैरवी करती है। पस ए नबी, वो इस मामले में तुमसे झगड़ा ना करें, तुम अपने रब की तरफ दावत दो, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर वो तुमसे झगड़े तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खूब मालूम है। अल्लाह कयामत के रोज तुम्हारे दरमियान इन सब बातों का फैसला करेगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के इल्म में है, सब कुछ एक किताब में दर्ज है, और अल्लाह के लिए यह कुछ भी मुश्किल नहीं। यानी सूरत के शुरू में भी कयामत का जिक्र और अब सूरत के एंड पे भी कयामत का जिक्र है। क्या पता चला कि इस कुरान को पढ़कर दिलों पे कयामत टूटनी चाहिए। क्या था शुरू सूरत का, या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस सा'अति शय्युन अज़ीम। यहां भी कयामत की बात कर दी, आपको मुझे बता दिया कि इस वक्त जिस जगह बैठकर अल्लाह की किताब को पढ़ रहे हो, यहां बैठे बैठे इस बात की दुआ कर लो कि अल्लाह कयामत जब आए तो हमारा मामला आसानियों का करना। आप देखिए कि आप और मैं इस वक्त इल्म ले रहे हैं ना, यहाँ बात हो रही है अल्लाह के इल्म की। नफा बख्श इल्म कौन सा होता है? हम दुआ भी करते हैं ना, अल्लाह मैं असलु का इल्मन नाफिया वा मला मुतकब्बला। तो नफा बख्श इल्म कौन सा होता है, नोट कर लीजिए। नफा बख्श इल्म की पहचान क्या है कि दिल और जुबान में हम आहंगी हो जाती है, दिल में अजम उठते हैं, जुबान उसका इकरार करती है और अमल उसकी गवाही देता है। और याद रखिए कि कयामतें दो हैं, एक तो वो जिसका आप जिक्र सुन रहे हैं और एक है मेरी आपकी मौत। जितना ज्यादा आप और मैं इसके लिए आज तैयारी कर लेंगे वहां आसानी होगी। मेरी आपकी जिंदगी क्या है, कभी आपने सोचा? जिंदगी, फिर मौत आ रही है, फिर उसके बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी कब्र में, फिर दोबारा सुला दिया जाएगा कब्र में, फिर हशर के दिन उठाया जाएगा, फिर वहां से मुख्तलिफ मरहले और बिल आखिर ऐसी जन्नत में इंशाल्लाह पहुंचा दिया जाएगा जिसके लिए आता है कि कोई यहां मौत नहीं है। ये मुख्तलिफ मरहले आपको मुझे क्या सिखा रहे हैं कि उस अल्लाह के ऊपर अपने आप को डाल दो। जब हम इन सारी चीजों को अल्लाह की बताई हुई सोच के मुताबिक रखते हैं तो हमारी जिंदगी में जरूर तब्दीली आती है, और जब ये नहीं तो अब आखिर सूरत का बड़ा स्ट्रांग है। यानी शिर्क की बुराई को समझने के लिए बेहतरीन और अक्ल को छूने वाली मिसालें हैं, आइए देखते हैं। अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया इनकी ये बात को, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سنت نازل کی ہے اور نہ یہ خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. کیا پتہ چلا دنیا کی کسی کتاب میں شرک کی کوئی دلیل نہیں کہ لوگوں شرک کرو یہ اچھی چیز ہے. لیکن مشرکوں کا حال وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. دیکھیے جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شرک کرنے والے بگڑتے ہیں, کہتے ہیں یہ صرف اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. یہ بھی قرآن سنانے والوں پر ایک بہت بڑا الزام ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ صرف قرآن کی بات کیوں کرتے ہیں, یہ ہمارے بزرگوں کے ہمارے بڑوں کی بات کیوں نہیں کرتے. تو یاد رکھیے اتنے بزرگوں کی باتیں تو قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت نوح سے بڑا کوئی بزرگ تھا اور ابراہیم سے بڑا کوئی بزرگ تھا. تو جب لوگ قرآن میں سے شرک والی باتیں سنتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں, تو وہ افینڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ ہوں گے, یہ وہ ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں, اور اتنا غصہ آتا ہے ان کو کہ وہ ٹوٹ پڑیں کہ گویا کہ اس بندے کے اوپر جھپٹ ہی جائیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے, آگ. یعنی تمہیں جتنا غصہ آ رہا ہے نا, اگر تم شرک کرتے ہوئے مر گئے تو آگ تمہارا نصیب ہے. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اے اللہ ہمیں بھی اور سب کو شرک سے بھی بچا اور آگ سے بھی بچا. اب مثال شروع ہوتی ہے, سنیے گا. یا ایھا الناس ضُرب مثل فاستمعوا له. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے, غور سے سنو. آپ کہیں گے ہم تو الحمدللہ سن رہے ہیں اور بڑے غور سے سن رہے ہیں, تو کہا ذرا اور توجہ رکھ لو. کیا جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. مکھی کتنی کو چیز ہے, چھوٹی سی. سارے معبود مل جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. اس کی گواہی تو آپ بھی دیں گے. کھانا کھاتے ہوئے اگر مکھی نے بیٹھنا ہے کہیں تو بیٹھنا ہے, اور آپ کے میٹھے پے سے کچھ قطرہ ایک چینی کا لے جانا ہے تو لے جانا ہے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. چاہنے والا کون ہے جو قبر کے باہر کھڑا ہے, اور جس سے چاہ رہا ہے وہ تو بیچارہ قبر کے اندر ہے. وہ تو پتھر کا بت ہے, وہ تو مٹی کا بت ہے. بتاؤ ذرا وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ قبر سے نکل کر اگر وہ آ سکتا تو سب سے پہلے اپنے اوپر سے مٹی نہ جھاڑتا. منگتوں سے مانگتے ہو, داتا کو چھوڑ دیتے ہو. اتنی بڑی ہستی جو کہتا ہے بار بار للہ ما فی السماواتی, جو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو دیکھیے عقل کو ٹچ کرنے والی آیتیں ہیں کہ اللہ سے مانگو. تھوڑا بھی اللہ نے دینا ہے, زیادہ بھی, چھوٹا بھی, بڑا بھی, بیٹا بھی, بیٹی بھی, صحت بھی, بیماری بھی, اسی نے دور کرنی ہے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی. یہ کمنٹ ہے, ما قدر اللہ حق کا قدری. مشرک نہ قدرہ شخص ہوتا ہے. اور یاد رکھیے ہر شرک جا کے کسی بت کو یا پتھر کو پوجنے سے نہیں ہوتا. دنیا میں دوسروں کو سہارا سمجھنا بھی شرک ہو جاتا ہے کبھی. ما قدر اللہ حق کا قدری, تین دفعہ یا آگے بھی ہم پڑھیں گے. اللہ کی لوگوں نے ویسی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. بات سمجھیے, شرک کی کوئی گنجائش نہیں. پیچھے ہم نے نحل پہ کتنی لمبی بات کی. یہاں زباب ہے, بیکار, چھوٹی سی چیز. لیکن یہ چھوٹی سی چیز بھی اللہ نے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. تو زندگی سے شرک کو مٹانا, اپنا نصب العین بنا لے آج سے. باقی باتیں بعد میں, پہلے شرک ختم کروں گی. ڈھونڈیے, علم حاصل کیجیے, پڑھیے ایسی کتابیں, توحید کی اقسام, شرک کی اقسام, مواحد کون ہے, اللہ کے نبیوں کے صفات, اللہ کے نیک لوگ, جن لوگوں کے نام پہ آج کئی لوگوں نے مذاہب بنا دیے. آپ دیکھیے وہ کیسی پیاری تصویر تھے توحید کی, اللہ پہ نظریں لگانے کی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے چن لے. اب یہاں سے آخری آیات جس میں چنے جانے کی بات ہے. अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास इन्नल्लाह समीउम बसीर। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने फरामीन को पहुंचाने के लिए फरिश्तों में से भी पैगाम रसा मुंतखब करता है, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चुना। हर नबी के पास वही वही लेकर आए और इंसानों में से भी, जैसे नबियों को चुना, और आज भी अल्लाह ने अपने उन लोगों को चुन लिया है जो अल्लाह की बातें अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी चुन ले। वो समी और बसीर है, जो कुछ लोगों के सामने है इसे भी वो जानता है, और जो कुछ इनसे ओझल है इससे भी वो वाकिफ है, और सारे मामलात अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं। क्या पता चला, अल्लाह ने पैगाम पहुंचाने का बड़ा खूबसूरत तरीका रखा है। एक होती है रिसालत मलक, फरिश्ते के जरिए पैगाम पहुंचाना, और एक होती है रिसालत बशर, बशर के जरिए पैगाम पहुंचाना। रसालत मलक में सिर्फ जिब्राइल का नाम है, और रिसालत बशर में हजरत नूह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दौर, और दूसरा दौर उम्मत मोहम्मदिया को लेकर क्यामत तक के लिए अल्लाह ने चुन लिया। आपको पुकारा जा रहा है, यह है हमारी इस हिस्से की आयत तदब्बर। जरा सा इस पे तवज्जो करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, पहले तो महसूस करें कि कितने दिन बाद हमें पुकार मिली अल्लाह की। पीछे इतनी मक्की सूरतें पढ़ी, एक दफा भी या अय्युहल्लज़ीना आमनु नहीं आया होगा। तवज्जो, मोहब्बत। जब कोई बहुत दिन बाद बुलाए तो हम कहते हैं जी, अब सवाल पैदा होता है कि हम क्या जवाब देते हैं। ये अब हमारा अपना नसीब है। अल्लाह हमें यहाँ चार कामों के करने का हुक्म देता है, और मैं पूरे यकीन के साथ बगैर किसी ढीली ढाली बात के कहूंगी, आज के मुसलमान की सारी मुश्किलात को खत्म करने का नुस्खा क्या है, आइए देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुर्कऊ वस्जुदू वाअबुदू रब्बकुम वफ़्फ़लुल ख़ैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इतना ही नहीं बल्कि वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअलकुम अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज। जरा से इसको अपने दिल पे महसूस करें, फिर मैं बोलूंगी। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो, और अपने रब की बंदगी करो और नेक काम करो। इसी से तवक्को की जा सकती है कि तुमको फलाह नसीब हो। और क्या करो, अल्लाह की राह में मेहनत करो, जिहाद करो, जैसा कि जिहाद करने का हक है। क्यों क्यों करें ये सब कुछ, ये थिंग्स टू डू क्यों मिल रही है, ये डेली वर्कशीट क्यों मिल रही है तुम्हें, ये सब कुछ करना है शाम तक, इसलिए कि इसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है, और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। ये क्या बात है। अगला हिस्सा भी पढ़िए आयत का, और भी एक नेमत। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। कायम हो जो अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर, यानी तुम्हारी जिंदगी का मकसद और तरीका कार वही होना चाहिए जो इब्राहिम का था। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, हर दौर के नबी की कौम का नाम मुस्लिम, और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है। खुदा के लिए फिरकों के नाम अपने नाम के साथ मत लगाओ। मुस्लिम लफ्ज को छोड़कर तुम कोई भी नाम लगा लो, वो कभी तुम्हें वो नहीं सोच देगा जो लफ्ज मुस्लिम देता है। क्यों, मुस्लिम की निस्बत अस्सलाम से अल्लाह। बाकी नाम देख लीजिए इसके तकाबुल पे, जो आज अमूमन लोग रखते हैं, ब्रेलवी शहर बरेली की तरफ निस्बत, हनफी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तरफ निस्बत, मालिकी इमाम मालिक की तरफ निस्बत। ये चुने हुए लोग थे, बुरी बात नहीं है, बट बताइए जरा किससे निस्बत जोड़नी पसंद करेंगे, अल्लाह से या मखलूक से, या शहरों से नस्बतें, या इंसानों से नस्बतें। और आज फिरकों में बटी हुई उम्मत को अल्लाह फिर पैगाम दे रहा है सूरत के आखिर में कि आज से सारे नामों की कुर्बानी करो। बकरे छतरे कुर्बानियां तो करते ही हो, इस सूरत को पढ़ने के बाद आज कह दो, आज के बाद मेरा एक ही फिरका, मेरा एक ही मसलक जो अबू बकर उमर उस्मान और अली का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तकरीबन, यानी सनों में ना पढ़े, कई सौ साल तक लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को मुस्लिम कहलाया। हत्ता के आयमा कराम जिनके नाम पे आज हनफी शाफी मालकी बनकर लड़ते हैं, उनके दौर में भी लोग खुद को मुस्लिम कहते थे और उन्होंने भी कभी नहीं कहा था हमारे नाम के साथ नाम जोड़ो। हाँ, उनको तोहफा मिल रहा है अल्लाह की इताअत और बंदगी करने का कि अल्लाह ने उनके नामों को इज्जत दे दी। तो याद रखिए, फिरकों में बंटना उम्मत को तोड़ना है, इख्तलाफ में बंटना है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुस्लिम लफ्ज़ पे खुश हो जाओ, ये सब करोगे तो मिलेगा क्या, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो, कब, क़यामत के दिन, और तुम लोगों पर गवाह। कैसे? दूसरे पारे की पहली आयत याद कर लें, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास। कल क़यामत के दिन मैंने और आपने गवाहियां देनी है लोगों को, किस बात की, कि नबी आए थे, पैगाम पहुंचा था, लेकिन कौमों ने नहीं माना। कौमें कहेंगी तुम्हें किसने कहा, कोई तुम नूह के दौर में थी? हम कहेंगे हमने कुरान में पढ़ा, और हम इस कुरान की बुनियाद पे गवाहियां देते हैं। बस नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। ये और भी खूबसूरत बात है, अपनी सारी वाबस्तगियां अल्लाह से जोड़ लो। वा तसीमु बिल्ला, जुड़ जाओ अल्लाह के नाम से, किसी नाम से ना जुड़ो, किसी उस्ताद के साथ ना जुड़ो, किसी तारे के साथ ना जुड़ो, किसी का नाम ना प्रमोट करो, सिर्फ उसका नाम ऊपर कर दो जो अल्लाह का नाम लेता है। किसी का नाम भी बताओ तो ये सोच के बताओ कि इससे जुड़ जाएंगे तो अल्लाह से जुड़ जाएंगे। शख्सियत परस्ती से आज़ाद हो जाओ, गिरोहों में बंटने से आज़ाद हो जाओ। क्यों करें ये सब कुछ? इसलिए कि हुआ मौलाकुम, वो है तुम्हारा मौला। फनेमल मौला व नेमन नसीर, और क्या ही खूब अच्छा है वो मौला और बहुत ही अच्छा है वो मददगार। क्या खूबसूरत आयत है, इस पे दर्स भी बहुत दफा दिया मैं, अगर एडमिन को कहीं मिल जाए तो आपको जरूर दें, क्योंकि ये आयत इस वक्त हक नहीं दे सकेंगे हम इसका। सोच दे देती हूँ सिर्फ कि आज के दौर में हम मुसलमानों को ये काम करने हैं फिर इज्जत मिलेगी। खुवजतबाकुम, खुशियां मनाओ, तुम्हारा चुनाव हो गया, तुम्हारी सिलेक्शन हो गई, रिसालत की कड़ी में मुसलमानों अल्लाह ने तुमको एक तीसरे लिंक के तौर पे जोड़ दिया। पहले रिसालत मलक और रिसालत रसूल थी, बशर थी, तुम्हें अल्लाह ने एक उम्मत को उसमें जोड़ दिया। आज अगर पीछे रह गए तो कल कैसे वहां आगे जाएंगे? दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी गफलतें दूर कर दे। अल्लाह चुनाव कर रहा है, अल्लाह पुकार रहा है, और हम खा रहे हैं और पी रहे हैं और पका रहे हैं और झा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। अल्लाह की मार्फत होगी ना, याद रखिए माँ कदरुल्लाह से बात शुरू हुई है। जब तक अल्लाह की मार्फत नहीं है उसके काम की पहचान नहीं, जब तक अल्लाह की कदर नहीं अल्लाह के काम की कदर नहीं है, अल्लाह की कदर नहीं है अल्लाह की इस किताब की कदर नहीं है। जो अल्लाह को पहचान जाते हैं वो इससे कमतर पे तो राजी नहीं होते कि हम अल्लाह के नाम के ऊपर अपने नाम को लगा दें, अल्लाह से जुड़ जाएं। तो बात ऐसे मुंह कैसे होगा, इस कुरान की रस्सी से जुड़कर हाई अचीवर बन जाओ। आप देखिए बहुत ऊपर से एक रस्सी लटक रही है ना, आप नीचे ही अभी, आप उस रस्सी को थाम लें, ऊपर वाला खींचेगा, आप भी ऊपर चले जाएंगे। जैसे कमजोर सी बेल होती है, जमीन पे बिछी रहती, लोगों के पाँव में ही आके मुड़ जुड़ जाती, उसकी एक डोरी पकड़ के, उसकी एक डंडी पकड़ कर रस्सी से किसी दरख्त पे बांध दे, वो बेल ऊपर चलती है। ये करना है मैंने आपने, अल्लाह से अपनी रस्सियां जोड़ लें, अल्लाह से जुड़ जाए। वा तसिमु बिल्ला, ये मेरी आपकी बेकार जिंदगियों को अल्लाह ताला देखिए क्या बना देगा, आपको खुद यकीन नहीं आएगा। इस दुनिया ने आपको जो देना था वो दे दिया है, अभी तक तो वो आपसे उसका हक ही नहीं पूरा करवा रही। इसलिए अपने आप को ऊपर उठाइए, इस कुरान को लेकर चलेंगे, दुनिया में भी आपको इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी। बाकी रह गई आसाइश या आजमाइश, ये दोनों चीजें तो फिर दुनिया की बातें। देखिए आग है या बाग है, चॉइस आपके मेरे हाथ में। और यहाँ ये जो जिहाद की बात है तो ये हाथ में गन और पिस्तौल पकड़ाने की बात नहीं है, मैं कई दफा बता चुकी हूँ। जिहाद का आगाज कलम पकड़ने से होता है, वो किताल है, वो सजा है किताल, कलम ना पकड़ने की, कि अब तलवारें पकड़ो। जिस कौम ने अपने दीन को सीखने सिखाने और उसको आम करने के लिए कलम नहीं पकड़े, फिर उनको बिलाखिर दुश्मनों से दिफा के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं। ये बीच की सीढ़ियां छोड़कर आखिर में पहुंचोगे तो उम्मत को बदनाम ही तो करोगे, और क्या है। वो तस्किया नहीं, वो तरबियत नहीं जो 13 साल में सहाबा की करके उजीना लिल्लज़ीना की आयत आज सूरत में सुनी, 13 साल की तरबियत के बाद हाथों में पिस्तौलें पकड़ाई थी अल्लाह के नबी ने। आज नमाज है कोई नहीं, जिहाद की बात कैसे करते हो, तभी तो फिर आपस में कट कट के मरते हो। तो करना क्या है, पहले हक को पहचाने, सबसे पहला काम जो मुझे आपको आज से करना है, हक क्या है उसको पहचाने, फिर उसको माने, फिर उस पर अमल करें, फिर उसके बाद नफ्स पे जिहाद करें, फिर तबलीग करें, फिर नाफिज करें। ये सात काम है जो इन आयतों में अल्लाह ने बयान कर दिए। और याद रखिए कि अल्लाह के रास्ते का जिहाद इंसानी कुव्वतों की मेराज है। और बचा के क्या करना इस जिस्म को, तू बचा बचा के न रख किसे के तेरा आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहें आईना साज में। कब्र में जाकर भी तो मट्टी होना है, वहां भी तो डाल आएंगे। क्या हुआ अगर इस खूबसूरत जिस्म को ही कब्र में डाला, गुटा फिटा कटा पटा और अल्लाह के रस्तों में सौंपते सहता हुआ जिस्म कब्र में भी जाएगा तो दुख कम होगा। हम सारी जिंदगी अपने आप को संवारते सजाते रहते हैं और सजे सजाए जिस्म को कब्र में डालना पड़ता है। दुआ कीजिए इस दुनिया में इसकी फिक्र करें। आज पूरी दुनिया में जो हो रहा है ये कोई नया नहीं है, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, बगदाद में जो मुसलमानों के साथ हुआ वो क्यों हुआ। याद रखिए दुश्मन अपनी अकलमंदी से नहीं, तुम्हारी बेवकूफी और तुम्हारी गफलतों से कामयाब हो रहा है, तुम्हारे जज्बाती जुमलों से नाकाम हो रहा है। और वो प्लानिंग कर रहा है, वो ऑर्गेनाइज्ड है और हम गफलत की नींद सो रहे हैं, हम घोड़े बेच बेच कर सोते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में इस दीन को लाते हैं तो फिर आवाज आती है निगलेक्ट निगलेक्ट निगलेक्ट, ये औरतें किन कामों में लग गई, ये हो गया। तो याद रखिए एक वर्किंग लेडी बड़े तरीके सलीके से घर को साथ चला लेती है। बीसियों क्या सैकड़ों की सोसाइटी में भी, आप में से भी हो सकता है कुछ वर्किंग लेडीज हो, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज कर लें अपने आप को, घर और जॉब साथ चलती है। तो अल्लाह के दीन का काम और घर साथ क्यों नहीं चलता? इसलिए कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरीनी। और अल्लाह ने तो हमें सब कुछ बता दिया है कि कायदून के साथ अल्लाह की मदद नहीं आती, साबिकून के साथ आती है। बैठे तो गिट्टों गोड्डों में पानी पड़ जाता है, दुनिया में बैठने वाले का जिस्म फूल जाता है, मोटा हो जाता है, बॉडी में कह लीजिए सर्कुलेशन रुक जाती है। तो याद रखिए कि हमने आपने इस एक आयत पे अमल करना है। कल तक आपने खास तौर पे इस एक आयत को अपनी नजरों में रखना है, 8-10 दफा इसको पढ़ सके तो पढ़े, और फिर आप देखें कि इसके मुताबिक अब आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है। क्योंकि ईमान के तकाजे जिंदगी में जब आ जाते हैं तो फिर इंसान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। फिर आप कहते हैं कर लेंगे, और हम अपनी जिंदगियों को मनाएं, हम उनकी हॉलोवीन को मनाएं, हम उनके वैलेंटाइंस को मना लें और वो हमारे बच्चों की सोचें बदल दें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें नस्लों की हिफाजत करने वाला बनाए, और ये इस दुखी इंसानियत पे भी रहम होगा आपका मेरा। खुद अपने आप को अल्लाह के दीन से जोड़कर दूसरों को दिखाइए कि अल्लाह के दीन में कितनी ठंडक है और कितनी खूबी है, और अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे पारा पूरा होता है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे।